नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे ने थिम्फू में भारत के सहयोग से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस में आतंकी हमले की निंदा की। पंजाब के संगरूर जिले के कई गांवों में जहरीली शराब पीने से 20 से अधिक लोगों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री तोब्गे छेरिंग ने आज थिम्फू में ग्याल सुवेन जेटसन पेमा मातृ और शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। भारत के सहयोग से 150 बिस्तरों वाला ये अस्पताल 2 चरणों में पूरा हुआ है। एक रिपोर्ट। नवनिर्मित अस्पताल मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा। अस्पताल में बाल रोग, स्त्री रोग और प्रसूति विज्ञान, ऑपरेशन थिएटर, नवजात और गहन बाल देखभाल की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत अगले 5 वर्ष में भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की यात्रा के पहले दिन कल थिम्फू में ये घोषणा की। प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश को आश्वासन दिया कि दोनों देश आपसी संपर्क, आधारभूत अवसंरचना, व्यापार और ऊर्जा उद्योग क्षेत्रों में अधिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाएंगे।
भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय किया है। वहीं भूटान ने 2034 तक हाई इनकम देश बनने का लक्ष्य रखा है। आपके इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीबी यानी ब्रांड भूटान और भूटान बिलीव दोनों को सफल बनाने के लिए भारत हर कदम पर आपके साथ खड़ा है।
यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कल भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे से बातचीत की। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पूरी कर वापस नई दिल्ली पहुंच गए हैं। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने 2,100 पर्यवेक्षकों की टीम तैनात की है। ये पर्यवेक्षक देशभर में जिला चुनाव अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों पर निगरानी रखेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने का कार्य जारी है। कल 10 उम्मीदवारों ने 12 नामांकन पत्र भरे। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक 16 उम्मीदवारों ने 21 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। पहले चरण के लिए पर्चे भरने की अंतिम तारीख 27 मार्च है। त्रिपुरा में 19 और 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो रहा है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में त्रिपुरा पश्चिम संसदीय सीट के लिए 19 अप्रैल जबकि त्रिपुरा पूर्व के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज पार्टी मुख्यालय में होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर विचार विमर्श होगा। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, राज्य चुनाव समितियों के सदस्य और पदाधिकारी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के 6 पूर्व विधायक केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इन्हें कांग्रेस विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। ये पूर्व विधायक हैं सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा। हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायक भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में 18 से 19 वर्ष की आयु के लगभग 1,80,00,000 युवा पहली बार मतदान करेंगे। पहली बार मत देने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आई वोट फॉर श्योर जैसे कई सोशल मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
इस बार करीब 19,74,00,000 मतदाता 20 से 29 साल की उम्र के हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 17 साल से अधिक उम्र के युवाओं से 13,00,000 से अधिक अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं। लोकतंत्र के त्योहार में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग सचिन तेंदुलकर और राजकुमार राव जैसे जाने माने व्यक्तित्वों का सहयोग ले रहा है। युवाओं की भागीदारी में बाधाओं को दूर करने के लिए आयोग टर्नआउट कार्यान्वयन योजना लागू कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पूरे देश में इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है जहां 7 चरणों में चुनाव होने हैं। एक रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जो देश में सबसे अधिक है। इसी वजह से देश की राजनीति खासतौर पर केंद्र की सत्ता के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में भाजपा की सरकार है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल भी राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच है। इसमें रालोद भाजपा के साथ गठबंधन में है। 2 मार्च को ही भाजपा ने 51 नामों की पहली सूची जारी कर दी थी। आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
नागालैंड में 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा। राज्य में स्वतंत्र उम्मीदवार हेइथुंग तुंगु लोथा ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है और वो नागालैंड से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले पहले उम्मीदवार हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पल में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर आज सिंगापुर पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सबसे पहले INA स्मारक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये स्मारक INA की देशभक्ति और अदम्य साहस की भावना का प्रतीक है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेगा। रूस में राजधानी मॉस्को में कल रात बंदूकधारियों की गोलीबारी में 60 से अधिक लोग मारे गए और 145 से अधिक घायल हुए हैं। आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस हमले पर दुख व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसके जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए रूस सरकार के साथ सहयोग करने का आह्वान किया है। सुरक्षा परिषद ने कहा कि आतंकवाद की इस घटना के षड्यंत्रकारियों और समर्थकों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस हमले की निंदा की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
रूसी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार हमले में शामिल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कल रात एक विस्फोट में बस्तर फाइटर्स के 2 जवान घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह विस्फोट तब हुआ जब सीआरपीएफ, बस्तर फाइटर्स और जिला रिजर्व गार्ड का संयुक्त दल किरंदुल में तलाशी अभियान चला रहा था। घायल जवानों को इलाज के लिए राजधानी रायपुर भेजा गया है। इस बीच बीजापुर जिले के पिडिया इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के मुताबिक गोलीबारी में 2 माओवादी मारे गए हैं। पंजाब में संगरूर जिले के कई गांवों में जहरीली शराब पीने से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की विशेष टीम इस मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 8 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।
संगरूर जिले के दिड़बा इलाके से शुरू हुआ जहरीली शराब से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये कहर इसी जिले के सुनाम में भी देखने को मिल रहा है। आज 6 और व्यक्तियों की मौत से सुनाम और दिड़बा में मृतकों की संख्या 20 हो गई है। करीब 16 पीड़ितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है और इनमें कुछ गंभीर है। इस बीच समूचा विपक्ष घटना को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग कर रहा है। शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आबकारी नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने केजरीवाल को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए अदालत से 10 दिन की हिरासत की मांग की थी। निदेशालय ने कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति को तैयार करने में सीधे तौर पर शामिल थे। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ हर्षवर्धन और पार्टी के कई नेताओं ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए धरना भी दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के कोलकाता सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये छापेमारी प्रश्न पूछने के बदले धन लेने के मामले में की जा रही है।
ब्यूरो ने लोकपाल के निर्देश पर पूर्व सांसद मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। लोकपाल ने एजेंसी से इस मामले में 6 महीने में रिपोर्ट देने को कहा था। महुआ मोइत्रा को संसद की आचार समिति की सिफारिश के बाद पिछले वर्ष दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। संसद में प्रश्न पूछने के बदले एक व्यापारी से रिश्वत लेने के आरोप के बाद समिति ने मोइत्रा के निष्कासन की सिफारिश की थी। समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना।
दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 26 मार्च तक बढ़ा दी है। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता के रिमांड पूरी होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद ये आदेश पारित किया। जांच एजेंसी ने अदालत से सुश्री कविता की 5 और दिन की रिमांड की मांग की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने भारत के आंतरिक मामलों में जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर नई दिल्ली में जर्मन उप प्रमुख को तलब कर कड़ा विरोध जताया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत ऐसी टिप्पणियों को न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम आंकने के रूप में देखता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत कानून का पालन करने वाला सुदृढ़ लोकतंत्र है। अमरीकी सीनेट ने अंतिम समय में हुई सहमति के बाद $12 खरब का वित्तीय पैकेज पारित कर दिया है। इससे अमरीका में आंशिक सरकारी शटडाउन टल गया है। इस कानून के समर्थन में 74 और विरोध में 24 मत पड़े। इस कानून को कल प्रतिनिधि सभा ने मंजूरी दी थी। अब इसे राष्ट्रपति जो बाइडेन के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। समुद्री डाकुओं के खिलाफ अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना पोत INS कोलकाता पकड़े गए 35 सोमाली समुद्री डाकुओं को लेकर आज मुंबई पहुंच गया। समुद्री डाकुओं को येलो गेट पुलिस को सौंपा गया है। इस पोत को अदन की खाड़ी में तैनात किया गया था। INS कोलकाता ने ड्रोन का उपयोग कर हथियारों से लैस समुद्री डाकुओं की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने डाकुओं के कब्जे वाले जहाज MV रूइन को रोक लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कदाचार में लिप्त 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें दिल्ली के भी 5 स्कूल शामिल हैं। बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा है कि औचक निरीक्षण के दौरान संबद्धता और परीक्षा मानदंडों के पालन में विसंगतियां पाए जाने के बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव का आज शहीदी दिवस है। आज ही के दिन वर्ष 1931 में लाहौर षड्यंत्र मामले में इन तीनों महान शहीदों को फांसी दी गई थी। इस अवसर पर आज पंजाब सहित पूरे देश में इन महान शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। IPL क्रिकेट में आज मोहाली में दिन में 3:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से और कोलकाता में शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किदाम्बी श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल स्विट्जरलैंड के बेसल में उन्होंने पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में ली चिया हाओ को हराया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज जिला न्यायपालिका प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये जनता के सामने न्यायिक प्रणाली का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने थिम्पू में भारत के सहयोग से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 3 दिन की यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने रूस में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पंजाब के संगरूर जिले के कई गांवों में जहरीली शराब पीने से 20 से अधिक लोगों की मौत। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।